ओम शांति। आज का हमारा दोपहर का सेशन एक ऐसी आत्मा की सन्निधि में होने जा रहा है। आदरणीय सूरज भाई, पिछले 38 सालों से आपने अपना जीवन राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास में बिताया है। आप अच्छे लेखक हैं, वक्ता हैं। योग की गहराई में जाने की उनकी एक खासियत है और लोगों को अपने साथ ले जाने की भी आपकी एक विशेषता है। आपको भारतीय विरासत और मानव मन में बहुत ही गहरी रुचि है और आपने उसमें गहन अध्ययन भी किया है। आप तीनों कैंपस हमारे जो हैं, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, माउंट पांडव भवन के किचन के इंचार्ज भी हैं और हमारी जो SIG बोलते हैं ना, विशेष रुचि ग्रुप, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, उसमें राजयोग लैब के वो कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम आपसे आज का जो तीन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है कर्मयोगी अवस्था वाला, उसके ऊपर भाई साहब से हम सुनने जा रहे हैं। भाई साहब, कर्मयोगी अवस्था द्वारा हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय सूरज भाई जी।
ओम शांति। सभी का रुचिकर विषय है कर्मयोग, पसंद है। जब से बाबा इस धरा पर आए, आते ही राजयोग सिखाया। 80 साल हो गए सिखाते हुए। मैं एक बात कहता हूं हमेशा, चाहे और 80 साल सिखाए भगवान राजयोग और चाहे हम भी रोज क्लास कराएं राजयोग पे, और भी बहुत लोग कराएं, फिर भी बहुत लोगों के ये प्रश्न वैसे ही रह जाएंगे कि योग कैसे लगाएं। कई तो ये भी पूछते रहते हैं, योग है क्या, ये या ये। मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि योग एक लाइन का सब्जेक्ट है। मैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, और योग संसार की सबसे गुह्यतम विद्या भी है। भाई वॉल्यूम जरा आप करो। योग संसार की सबसे गुह्यतम विद्या भी है, है या नहीं? इसको केवल अपने अनुभवों से ही सीखा जा सकता है। बिना अनुभवों के योग कठिन। प्रश्न वही बार बार। इसलिए रमेश भाई ने पास कर दिया, हम लोगों ने निकाला ये टॉपिक। मेरा लक्ष्य था, और आप सब भी इसको लक्ष्य बना लें कि समस्त ब्राह्मण परिवार में हम ऐसी एक योग की लहर फैलाएं जिससे हर आत्मा कर्म करते हुए अच्छे अनुभव कर सके, तब योगी जीवन सफल होगा। बैठ के योग करने वाले आज तक योगी नहीं बने। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, हम 2 बजे उठते हैं रोज, 2:30 बजे उठते हैं, योग लगाते हैं, फिर भी उनकी बातों से पता लगता है वो अभी तक योगी नहीं बन पाए हैं। कर्म योग परम आवश्यक है। क्यों? प्रोफेसर साहब बैठे हैं कहीं, सोचेंगे कर्म योग क्यों जरूरी है। जिनको भी थोड़ा थोड़ा भी इसका अनुभव है वो अपने अनुभवों को भी सामने लाएं और बाबा के महावाक्यों को भी, फिर इस पे कार्य करेंगे सभी। कर्म योग के बिना कर्मातीत नहीं हो सकते। बाबा का महावाक्य पहला सबसे गोइये, कर्म योग से ही विकर्मा जीत बनते हैं। दूसरा गुह्य महावाक्य, जो आत्माएं योग युक्त रहकर कोई भी कर्म करते हैं उनका वो कर्म, बोलो आगे किसको याद है, यादगार बन जाता है। द्वापर युग से बहुत सारे कर्म संगम युग पे उनके द्वारा जैसे कहेंगे बीज डाला गया, स्थापना हो गई, जिन्होंने योग युक्त होकर कर्म किए वो कर्म यादगार बने, अर्थात द्वापर से भी उन कर्मों की बहुत मान्यता हो गई। आज के संसार में आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कलयुग का अंधकार गहरा होता जा रहा है, उसमें भी चारों ओर के निगेटिव और इम्प्योर वाइब्रेशंस भयानक होते जा रहे हैं, भयानक, जिसमें अनेक लोग उस चक्रव्यूह में उलझते जा रहे हैं। ब्राह्मण भी जो कर्म योग करते हैं वो मानो इस निगेटिव एनर्जी से सेफ रहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि, सेफ रहते हैं। ऐसा कहें हमारे चारों ओर इस निगेटिव एनर्जी का तूफान चल रहा है, जैसे सागर लहरा रहा है, उसमें सेफ रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जो कुछ आज हो रहा है, आजकल जो प्रारंभ हो गया है वो ये है, अन्यथा सभी के पाप और संस्कार और विकार जो दबे हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। आप इस बात को सुनते होंगे, अगर आपसे लोग मिलते हो अपनी समस्याएं लेकर, मेरे पास तो बहुत युवक भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, उसमें बूढ़े हो या बच्चे, इमर्ज हो रहा है सब कुछ, कर्म योग से हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। कर्म योग एक ऐसी विधि है जिससे कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से हम मुक्त रह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। आप में से किसी ने गीता पढ़ी हो, गीता कर्म योग का ही शास्त्र माना जाता है विशेष रूप से, उसमें निष्काम कर्म योग की बहुत चर्चा है। राजयोग ही हमें सिखाता है, कर्म योग सिखाता है, कर्मयोग का आधार भी वही है और कर्मयोग करने से वो स्थिति बनती भी जाती है निष्काम, बहुत बड़ी स्थिति है वो, छोटी नहीं। बहुत लोगों ने उसकी व्याख्याएं की हैं आज तक, लेकिन हम अपने अनुभवों से उसे ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे जब हम कर्म करते हुए योग का अभ्यास करेंगे। एक और सुंदर महावाक्य मैं आपको बाबा का याद दिलाऊं, जिसका सबको अनुभव करना है, ये जो टॉपिक ले रहे हैं इसके माध्यम से उस अनुभव को बढ़ाना है और इसको सभी बेस बना देंगे अपने जीवन का। ये बाबा का बहुत गुह्य महावाक्य है, कोई भी कर्म साधारण स्मृति से प्रारंभ करना और श्रेष्ठ स्मृति से प्रारंभ करना, दोनों में महान अंतर है। कर्म हम शुरू कर रहे हैं, किसी स्मृति से कर रहे हैं, कर्म से पहले क्या विचार हैं हमारे मन में, एक है विचारों का होना, एक है श्रेष्ठ स्मृतियों का होना, दोनों अलग अलग चीज है। कोई गृह प्रवेश कर रहा है, खुशी होगी बहुत, उसके विचार होंगे हमने बहुत अच्छा घर बनाया, अब हम सुख से रहेंगे, उस घर में ये दिक्कतें थी अब सब दिक्कतें समाप्त हो गई, ये अच्छे विचार। लेकिन एक बहुत ऊंची स्मृति जिसको योग से जोड़ा जाएगा, उसके साथ ग्रह प्रवेश किया जाए, तो ये अनुभव करना है सबको कि कर्म करने से पहले जो पावरफुल स्मृति हम रखते हैं उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ता है, पूरे कर्म पर। जैसे मैंने गृह प्रवेश की बात कही, बहुत श्रेष्ठ स्मृति से यदि गृह प्रवेश किया जाए तो जब तक वो घर रहेगा वो वाइब्रेशंस काम करते ही रहेंगे। आप अपने घर से बाइक पे निकले हैं, आपको आधे घंटे की यात्रा है, कहीं जाना है, आप सुंदर स्मृति के साथ घर से निकले हैं, तो आधा घंटा वो वाइब्रेशंस आपके साथ काम करेंगे। तो इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना है और इसको ही हम लक्ष्य बनाएंगे कि हर कर्म से पहले भी और कर्म करने के समय भी हमें कौन कौन सी बहुत अच्छी स्मृतियां रहें, कैसे हम योग युक्त रह सकते हैं ताकि हमारा योग का चार्ट संतोषजनक हो जाए। चार घंटे तक चले, फिर आठ तक चले, और फिर कोई महान योगी हो जो बाबा ने अभी कहा निरंतर तक चले, ये संभव है या नहीं? या सोचते हैं ये निरंतर योग, ये आठ घंटा योग, ये तो किसी और के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं सुना करता हूं बात लोगों की, अगर किसी माता से गृहस्थी से ये कहा जाए आठ घंटे योग करो, वो कहती हमारे बस का ये काम थोड़ा, ये तो सेंटर में रहने वाले कर सकते हैं। सेंटर में रहने वालों से अगर कहा जाए तो वो कहते हैं सेंटर में रहने वाले बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये मधुबन वाले कर सकते हैं। मधुबन वालों से अगर कहा जाए भाई तुम करो तो वो भी कुछ उत्तर दे देते हैं, बहुत बिजी है, 12 घंटे सेवा है हमें। लेकिन जिनको करना है उन्हें करना है। शक्तिशाली आत्मा की तो पहचान ये है कि वो हर परिस्थिति में अपनी श्रेष्ठ स्थिति का मार्ग ढूंढ लेते हैं। शक्तिशाली आत्माएं परिस्थितियों के वश होकर कार्य नहीं करते, वो परिस्थितियों को अपने वश करते हैं। तो हमें जरा चेंज करना है अपने विचारों को। और भी कुछ बातें हैं जो आपसे चर्चाओं में लाएंगे, और जैसा हम पहले से करते आते थे कि मुरलियों से कर्म योग संबंधी कुछ बातें निकालेंगे। शुरू की मुरलियों में ये बातें बहुत मिलेंगी और ऐसे बहुत सारे अभ्यास भी मिलेंगे जो भिन्न भिन्न कर्मों में हम जोड़ सकते हैं। मैं कुछ आपको बताऊंगा, बाकी सब आपको भी ढूंढने हैं। लेकिन ये सोचना है कौन बन सकते हैं कर्मयोगी। सभी अपने अपने कर्म करने के तरीके पे ध्यान दें। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है सवेरे से शाम तक, क्या स्थिति है हमारी कर्म करते हुए? हम बहुत जल्दी काम करते हैं कि काम करते हुए सब कुछ भूल जाते हैं? बाकी हम टेंशन में रह के काम करते हैं, हम अपने साथियों के वाइब्रेशंस के प्रभाव में रहकर काम करते हैं, हम टाइम कॉन्शियस होकर काम करते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कर्म योगी नहीं बनने देंगी। 12 बजे तक हमें चार काम करने, बार बार घड़ी देख रहे हैं, स्पीड बढ़ा दी है पहले से ही, सब कुछ भूल गया है। बाबा परम धाम में हम नीचे, दोनों अलग अलग हो गए हैं। इन चारों चीजों को ठीक करना है। न कर्म कॉन्शियस, न टाइम कॉन्शियस, न बहुत ज्यादा टेंशन, न बहुत जल्दीबाजी। फास्ट गति होना अलग चीज है, मन को फास्ट कर देना अलग चीज है। मन की फास्ट गति कर दी तो सब खेल बिगड़ जाता है, उससे मन की शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं। कर्म योग के फायदों में मुझे एक चीज और याद आ गई। आप ढूंढेंगे मुरलियों से पॉइंट, इससे मुरलियों का अध्ययन भी बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ लेना काफी होगा शुरू से। बाबा ने कहा तुम अकेले काम करो और बाबा की याद में करो, उससे क्या होगा कि बाबा की शक्तियां तुम्हारे साथ काम करने लगेंगी, तुम्हारा फोर्स कई गुना बढ़ जाएगा, परिणामतः कर्म बहुत सहज कम समय में सफल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बात है। इसलिए जो मैंने चार चीजें पहले कही, सरलता और धैर्यता कर्म में अपनानी है। दो मुख्य धारणाएं, सरलता और धैर्य। बहुत माइंड की स्लो स्पीड, कर्म की स्पीड स्लो नहीं, ठंडे नहीं, माइंड की स्पीड स्लो। पीछे मैं क्लास कराने आया तो एक भाई को मेरे पास लाए जो बेचारा सेवा में आया है, ये सोच के कि मैं भी समर्पित होऊंगा। कहा भाई इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या? हमने इसको अभी कहा था कि जाओ क्लास होने वाली है, माइक आदि चलाना है, ये हमारे ऑफिस से और यहाँ क्लासरूम तक 20 मिनट में पहुंचा है, इतनी स्लो स्पीड है इसकी, इसको भी कोई समाधान बताओ। रास्ता 3 ही मिनट का है लेकिन वो 20 मिनट में पहुंचा है। मैंने उसको समझाया कि मैं थोड़ा सा पहले तो उसको रियलिटी बताई, आज तो तुम्हें सब प्यार करते हैं, कल तुम समर्पित हो जाओगे, लगातार तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए जहां हो वहीं भले हो, सुखी रहो, ठंडे लोग संगठन में नहीं जी सकते सुख से, फिर कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। फिर मैंने उसको एक दो विधि बताई, सिंपल विधि तो ये बताई कि हॉल का एक चक्कर दौड़ के लगा लिया करो सवेरे सवेरे, फिर दो लगाना धीरे धीरे, कदमों की गति तेज हो जाए, ऐसे ठंडे नहीं, गति फास्ट, मन की गति स्लो, यह है योगी की पहचान। दोनों गति फास्ट हो जाए तो योग छूट जाएगा। मानो बहनों को भोजन बनाना है घर में, भोजन बनाते ही पहले तो टाइम देखेंगे 11 बज गए, अब 12 बजे तक पूरा करना है, एक घंटा है, काम थोड़ा ज्यादा है, यहीं से योग खत्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जब से घड़ियां आई है ना, इन्होंने टेंशन बहुत बढ़ा दिया। घड़ी होना अच्छा है, टाइम से पहले सब काम करना अच्छा है, लेकिन टाइम कॉन्शियस होना, अवेयरनेस अच्छी चीज है, लेकिन उससे टेंशन में आ जाए, इससे हमारी इनर पावर, कर्म करने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। तो हम अपने कर्म करने के तरीके पे ध्यान दें, किस ढंग से हम काम करते हैं, हम काम को ठीक से मैनेज करते हैं या काम का एक बहुत बड़ा प्रेशर हमारे ब्रेन पर हमेशा रहता है, या हम उसको ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि हम कार्यों को एंजॉय करते हैं। कर्म योगी बनने के लिए कर्म को एंजॉय करना भी परम आवश्यक है। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आजकल हमारी चर्चाओं में और बाबा की मुरलियों में भी बहुत समय से उस बात पे उस तरह चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आज से हम इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएं, अंतर्मुखता। पहले ये मुख्य टॉपिक हुआ करता था। मैं कहीं बाहर के लोग मेरे से मिलते हैं कि हम विपस्याना में गए 10 दिन, संपूर्ण मौन, मोबाइल दूर रखा ले लिए थे सबसे, 10 दिन भोजन बिल्कुल, कैसा होगा? सादा ही नहीं, कुछ कच्चा और कुछ फ्रूट, पका हुआ खिलाया ही नहीं हमें। कहा 10 दिन में अपने जो बीके गए कुछ, कहा हम योगी बन गए। एक इंपॉर्टेंट धारणा जिस पे हम ध्यान दें, किसी ने मुझे सुनाया, एक अच्छे बड़े डॉक्टर यूपी के एक ग्रुप के पास गए ज्ञान देने के लिए, प्योरिटी पर चर्चा होने लगी। इन्होंने कहा प्योरिटी इस तरह कठिन होती है। उन्होंने कहा हम लोगों ने एक सुंदर प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, वो है कच्चा भोजन खाना, और कहा उससे इम्प्योर संस्कार पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। तो हम भोजन पे भी ध्यान देंगे योगी बनने वाले, भोजन पे बहुत ध्यान देना है। कई लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा खाने से एनर्जी ज्यादा रहेगी, हम कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। एनर्जेटिक भोजन, पौष्टिक भोजन, बहुत अच्छा, जिससे सब कुछ मिलता हो, वो भोजन ही योगियों के लिए काफी है। क्यों प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग फलों पे ही रह जाते थे? ऐसा नहीं उनके पास ज्ञान नहीं था, बहुत बड़े बड़े विद्वान चिंतक थे वो लोग, लेकिन ये महसूस कर लिया था कि भोजन जितना लाइट होगा कंसंट्रेशन उतनी ही सहज होगी। इस पर भी सभी बहुत ध्यान देंगे। तो कर्म योग को हम अपना जीवन बनाएंगे। पहले हम सब जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और फिर हम सबसे जुड़े हुए अनेक बाबा के बच्चे, उन सब में कर्म योग की लहर फैलाएंगे तो लोग देखें। और एक बाबा का महावाक्य कि जब हम योग युक्त होकर कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म एक कला महसूस होगा देखने वालों को, कि कर्म तो सभी कर रहे हैं पर इनका कर्म करने का तरीका सबसे न्यारा है, यह अनुभव हो जाएगा। इसलिए जिनको ये शिकायत रहती है हम बहुत बिजी हैं या हम सेवाओं में बहुत हैं, सेंटर की बहनें जो बहुत कहती हैं बहुत सेवाएं बढ़ गई हैं, सवेरे से रात तक सेवाओं में रहना पड़ता है, वो जरा अपने को चेंज करेंगे इन विचारों को, रेस्ट का टाइम भी निकालें ठीक ठीक, क्योंकि जो ठीक से नींद नहीं करते वो भी योगी नहीं बन पाएंगे, जो ठीक से भोजन नहीं करते वो भी योगी नहीं बन पाएंगे, जो ज्यादा सोते हैं वो भी नहीं, जो बिल्कुल नहीं सोते वो भी नहीं। बहुत अच्छा बैलेंस सबको लाना है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अब सब यहां होमवर्क ही करेंगे, रिसर्च करेंगे, अपनी अपनी दिनचर्या को देखते हुए अपने कर्मों की एक लिस्ट तैयार करेंगे सभी, कम से कम 16 तरह के कर्म हम सारे दिन में ये करते हैं। उसमें से कुछ कर्म शरीर के साधारण बिल्कुल, जो सबको करने हैं, जो सबके समान हैं, पानी पीना, नहाना धोना, खाना पीना, खाना बनाना, चलना फिरना, और इन 16 कर्मों में 16 अभ्यास जोड़ेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट हो जाती है ना, ये काम शुरू करना है, ये अभ्यास करना है, तो कर्म योग बिल्कुल ही सहज हो जाएगा। ये काम सभी को करना है। क्या अनुभव होगा कि जब हम अच्छी स्मृति से कर्म शुरू करेंगे और योग के किसी भी अभ्यास को कर्म से जोड़ेंगे, तो 2 घंटे में होने वाला काम पहले 1.5 घंटे में होगा और फिर वो 1 घंटे तक आ जाएगा, बल्कि इससे भी कम होने लगेगा। इसलिए योगी की, कर्म योगी की ये स्थिति आ जाती है, ये उसी की स्थिति का गायन है कि आत्मा निर्लेप है। वो तो हम जानते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन जब हम कर्म योगी बनकर रहते हैं तो कर्मों का इफेक्ट मन बुद्धि पर आता नहीं है। तो निर्लिप्त स्थिति का बहुत सुंदर अनुभव होगा। तो एक ये काम आप सभी को करना है। एक काम इससे ही जुड़ा हुआ मैं और आपको देना चाहता हूं। सभी इस पे बहुत अच्छी रिसर्च भी कर सकते हैं। संजीव भाई ये भी जोड़ लेना आप, क्योंकि योग में हम अपनी मन बुद्धि का प्रयोग करते हैं और बुद्धि हमारी 3rd eye है, 3rd eye ऑफ विजडम। अब इसमें 2 चीजें देखनी हैं कि कैसी विजडम हमने इसमें भरी है और 3rd eye को कितना क्लीन किया है। ये दोनों चीजें जिसके पास होंगी उसका योग और कर्म योग बिल्कुल सरल हो जाएगा। विजडम, विजडम सबसे श्रेष्ठ बाबा के बच्चों के पास ही है। दुनिया में विजडम आजकल लगभग लोप होता जाता है। हमारी एजुकेशन क्या बनकर रह गई है बताओ? एजुकेशन वाले बहुत बैठे हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक कहा आपने। हमारी एजुकेशन स्टूडेंट को विजडम कम दे रही है, इंफॉर्मेशन, और बाबा की एजुकेशन विजडम दे रही है, विवेक, श्रेष्ठ विवेक। किसने इस ज्ञान को अपना विजडम बनाया है, इस पर सभी बहुत अच्छा चिंतन करना। तो मैं ये सोच रहा हूं विनय भाई कि बहुत ज्यादा इतने सेशन न हो जाए, सबको अपने लिए थोड़ा टाइम मिले अपने से बात करने का, अपने पर एक दृष्टि डालने का। तो इस 3 दिन में अपने पर बहुत गहरी दृष्टि पड़ जाए और देख लें। अब इसमें जो बुद्धि की बात हमने की 3rd eye, उसमें हरेक को अपने लेवल पर पहले काम करना है। क्या? कि मैंने अपनी बुद्धि में क्या भरा है। ये बुद्धि एक सुंदर पात्र भी है, सोने का पात्र बनाया है या वैसा ही पात्र है ये मेरा। सबने बाबा की बातें सुनी हुई हैं। हमने बुद्धि में क्या भरा है और इन 3 दिनों में अपनी बुद्धि की सफाई करनी है। माताओं को तो सफाई का बहुत शौक होता है, भाइयों को होता है या नहीं? सबको होता है, लेकिन बुद्धि की सफाई सबको करनी है। अगर कोई व्यक्ति संसार में परेशान है तो बुद्धि में गंदगी है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है तो बुद्धि में बहुत निगेटिविटी भर ली है। और कुछ जो निगेटिव बातें आजकल की दुनिया में हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, खुशी नहीं रहती है, शांति नहीं है, बुद्धि में जो गंदगी भरी है उसका पता करेंगे, उसको हटाएंगे। हटाना बहुत सहज है हम सबके लिए, बिल्कुल सहज है, क्योंकि हमारे पास श्रेष्ठ ज्ञान है। पर हमने अपनी बुद्धि में भरा क्या है उस पर एक नजर डालेंगे, सफाई करेंगे, शुरू करेंगे सफाई। तीन दिन में तो नहीं हो जाएगी सफाई, लेकिन सफाई अभियान शुरू कर देते हैं। मोदी जी का अभियान हम भी आगे बढ़ाएंगे, अपने से शुरू करेंगे, ठीक है। घरों की सफाई तो ठीक है, पर मन बुद्धि की सफाई ये बहुत जरूरी है। ये सफाई होते ही बाहर की सफाई आप ही रुचिकर हो जाती है, मनुष्य गंदगी नहीं करता है। तो अब हम फिर उस प्रैक्टिकल टॉपिक पे आ जाए। ये इसलिए जरूरी है कि इसके बिना कोई कर्म योगी बन नहीं सकेगा, योग के प्रयोग नहीं होंगे, प्रयोगों में सफलता नहीं होगी, सदा क्वेश्चंस ही उठते रहेंगे। बुद्धि की सफाई जब हो जाती है तो ये विजडम, सद्विवेक, ईश्वरीय विवेक पूर्ण रूप से समाने लगता है बुद्धि में, और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी चीज है। सद्विवेक, सब ध्यान दें इसको, मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ये सब ब्राह्मणों को सीखनी है और सिखानी है कि हमारी बुद्धि गंदगी के लिए नहीं है, ये ईश्वरीय बुद्धि है। अपने से इस तरह बात करना, मेरी बुद्धि एक योगी की बुद्धि है, ये ईर्ष्या द्वेष के लिए नहीं, ये बुद्धि एक महान आत्मा की बुद्धि है, ये पाप कर्मों के लिए नहीं, ये बुद्धि ईश्वरीय वरदानों को धारण करने के लिए है, निगेटिविटी धारण करने के लिए नहीं। मुझे इस बुद्धि में ईश्वरीय शक्तियां भरनी है और कुछ नहीं, तेरा मेरा नहीं, पर चिंतन नहीं। तो बाहर निकाल देंगे अपने को तो कर्म योग का बहुत बड़ा सुख मिलेगा। कर्मयोगी बनने के लिए जैसे हमने कुछ बातें रखी, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट, हर कर्म को एंजॉय करना, हर सिचुएशन को एंजॉय करना, कुछ चीजें अपने पास ऐसी पक्की कर देना है जो अभ्यास से पक्की हो जाएंगी, जो भूले ही नहीं, हमारी नेचर बन जाए। कुछ बाबा के अभ्यासों को अपनी नेचर बना देना है हमें। तो जो 16 बातों की चर्चा मैंने की, मैं आपको उसमें कुछ उदाहरण दे देता हूं, सहज भाव से आप उन्हें करेंगे, नोट कर लें और उन्हें जोड़ेंगे एक एक कर्म के साथ। पहला सबसे सुंदर जो हमारा कार्य है, सवेरे उठकर उसका आनंद लेना, उसको मैं सबसे लास्ट में लूंगा। लेकिन उसके बाद बाबा ने एक बात कई बार शुरू में कही थी कि उठते ही ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा परम धाम से इस तन में आ गई हूं श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए, मैं अवतरित हो गई हूं। इनकी चर्चा तो हम करते हैं। बाबा की एक मुरली है बहुत अच्छी, 79 की, 31 दिसंबर है शायद, डेट कुछ आगे पीछे हुई है किताबों में, आप देख लेंगे, जिसमें बाबा ने सारे दिन की दिनचर्या स्पष्ट करके क्या क्या अभ्यास करो, कुछ अभ्यास सुनाए थोड़े से। उस टाइम भी हमने बहुत सारे अभ्यास और जोड़े थे, बाबा ने 7-8 सुनाए थे, उसमें से एक बहुत अच्छा था जो हम लोग बहुत किया करते थे, हमने अपने ग्रुप में मधुबन में, तब मधुबन छोटा ही था, ये बहुत अच्छी तरह लहर कर दी थी कि जब स्नान करें तो अभ्यास करेंगे। बाबा ने सिखाया कि मैं आत्मा इष्ट देव इष्ट देवी हूं और ये देह मेरा मंदिर है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अपने मंदिर की धुलाई सफाई कर रहे हैं, दो चार पांच बार याद कर ले, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, नेचर बन जाएगी। मैं इसमें और अच्छी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस की थी। शीशे के आगे गए सेविंग करने, भाइयों को सेविंग करनी होती है, भाइयों के लिए जरूर बहुत अच्छा होगा। तो हम अपने को ही देखेंगे सामने, तो सामने अपने को ही आत्मा देखना पहले। ये आत्मा ये शरीर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। ब्रश करना है, हम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अभ्यास तब करते थे कि ये इस मंदिर का मुख्य दरवाजा है, उसकी सफाई कर रहे हैं। मैं एक महान आत्मा हूं ये हमने उस समय जोड़ लिया था। 3 मिनट तो लगते हैं ना, 3 मिनट बहुत अच्छा समय है योग के लिए। मैं एक महान आत्मा हूं, डीप एक्सपीरियंस, उसका एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, मैं एक महान आत्मा हूं। पानी पीना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। पानी, दूध, ड्रिंक्स, जो भी, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। 2 बार 3 बार बहुत अच्छी नेचर बन जाती है। भोजन खाना आप जोड़ेंगे, मैं कुछ बता रहा हूं आपको, बाबा का आह्वान कर लिया, बाप दादा दोनों आ जाओ, फिर कभी बाबा की किरणें पड़ रही हैं भोजन पर। मैं आत्मा इस देह को ये भोजन दे रही हूं, ये गाड़ी है इसमें पेट्रोल डाल रही हूं। बहुत अच्छा, कोई सुंदर संकल्प। संकल्प चेंज कर सकते हैं, एक ही सदा नहीं होगा, एक संकल्प मनुष्य को बोर करेगा, चेंज करते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे संकल्प मुरलियों से भी ढूंढेंगे, मिलेंगे मुरलियों में, सब हैं। और जब हम खुद अभ्यास करेंगे तो हमें नए नए संकल्प स्वतः ही टच होते रहेंगे। कार कौन कौन चलाते हैं आप में से? ठीक है, बाइक, बहुत अच्छा। आप देखो, कार में आप प्रवेश किया, कई अभ्यास कर सकते हैं, मेरा देह भी मेरी कार है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं आपको, 5 साल पहले की बात होगी। शांतिवन से मैं मधुबन जा रहा था, क्लास थी पंडवन में, मैं खुद ही गाड़ी चला के जाता, अकेला था, मस्ती से जाना था मुझे। 35 मिनट में पहुंचते थे, तब भीड़ नहीं होती थी, मैं सोचा मैं 45 मिनट में जाऊंगा, मैं टाइम लेके चला। और मैंने एक बहुत अच्छा अभ्यास सोच लिया, जैसे लाइट जलाई ना, 2 लाइट जल गई, तो मैं सोचा तीसरी मेरी है, बीच में 2 इधर है, तीसरी मेरी, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, चमकती मणि, और मेरी लाइट भी ऐसे सड़क पर पड़ती जा रही है। तो मैं 40 मिनट में पहुंचा और मैंने ये फुल अभ्यास कर लिया, 40 मिनट में 40 ही हो गया होगा। तो देखो, मुझे पता चला क्या होता इफेक्ट। मधुबन में क्लास हुई, 4 भाई भागे भागे मेरे पास आए, एक बात सुनानी, एक अनुभव सुनाना है। मैंने कहा जल्दी सुनाओ, मुझे अभी जाना है जन सरोवर। कहा आपके मस्तक से आए लाइट निकल रही थी। तो मुझे तो ये बात हम पहले भी जानते हैं कि जो आत्मा जिस तरह का अभ्यास बार बार करेंगे ना, उसी स्थिति का साक्षात्कार आने वाले दिनों में सबको होगा, अज्ञानियों को भी होगा। अगर आपने अभ्यास कर लिया मैं इष्ट देवी हूं संतोषी मां, तो वही देखेंगे आपको लोग, भक्त देखने लगेंगे। क्योंकि स्मृति से स्वरूप का निर्माण होता है, ठीक है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्मृति से स्वरूप निर्मित होता है। तो बहुत अच्छा था, जिन्होंने आत्मिक स्वरूप का बहुत अभ्यास कर लिया, अब जब जय जयकार का समय आएगा सबको उनके मस्तक में चमकती हुई ज्योति नजर आएंगी। इसको ही बाबा ने 69 में कहा था, सबके मस्तक में ज्योति नजर आएंगी, लोग कहेंगे, आवाज फैल जाएगी, सबके शरीर में भगवान बैठा है, हमने देखा है, झूठ नहीं है, मस्तक में चमक रहा था। सर्वव्यापकता का सिद्धांत चालू हो जाएगा। गड़बड़ तो हम लोगों ने की है ना सारे, तो कार में बैठो, बाइक पे बैठो, एक सुंदर प्रैक्टिस डाल लें बाप दादा का आह्वान। और अगर इसको बहुत किया जाए अपने घरों में भी, तो बिल्कुल क्लियर फीलिंग होने लगेगी, बाबा आकर खड़े हो गए हैं, उसकी पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैल रही है, बहुत सुंदर अनुभव ये करने हैं। तो बाप दादा का आह्वान, आ जाओ। एक मिनट, आधा मिनट जरूर देना है चलने से पहले, यानी बाइक स्टार्ट किया ठक एक सेकंड में भगा दी, बाबा का आह्वान करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अगर कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा मेरे साथ है, सफलता निश्चित है, ये सुंदर संकल्प आधा मिनट भी करके चलें। अगर कुछ विघ्नों की आशंका है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, ये याद करके चलें। इसको अपनी नेचर बना लें। बहनों के लिए भोजन बनाने जाएं, भोजन को एंजॉय करें, भोजन बनाने को एंजॉय करना है, बहुत अच्छा काम है। सारे परिवार के लिए पवित्र ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, जिससे सभी का चित शांत हो जाएगा, सबका क्रोध समाप्त हो जाएगा, सब निरोग हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे ब्रह्मा भोजन खाके। बाबा को थैंक्स दे, आपने मुझे ये सुंदर कार्य दिया है, आपको बारंबार शुक्रिया। सुंदर विचारों से शुरुआत करें कर्म की, फिर बाबा का आह्वान करें अपने किचन में। अब कई अभ्यास हो सकते हैं उसके बाद, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये याद करते हुए भोजन बनाए। जिसको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए योग का, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, किरणें लेते हुए भोजन बनाए, सब कर सकते हैं, थोड़ा वो थोड़ा वो। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, इस आनंद में, इस स्मृति में भोजन बनाए। ऐसे और कुछ बातें चुन लें, कोई भी निगेटिविटी मन में भोजन के समय ना हो। और भी कुछ सिखाएंगे आप दूसरों को, किसी के घर में और कोई भोजन बनाते हैं, आप बुजुर्ग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे भोजन में अपने अच्छे वाइब्रेशंस, बाबा के वाइब्रेशंस डाल सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं, फिर से भाई लोग ध्यान दें, ये ना आप सोचें कि हम तो बहुत बिजी हो जाते हैं, मन को पूरी तरह, मन बुद्धि को पूरी तरह कार्य में बिजी नहीं कर देना, थोड़ा सा डिटैच, अपने अपने नियम बना लें कि हर आधे घंटे में मुझे ये अभ्यास अवश्य करना है। रोज एक अभ्यास लेके जा सकते हैं अपने ऑफिस में, ऑफिस के विशेष कार्यों के लिए विशेष अभ्यास रख सकते हैं। उदाहरण, मैं दो उदाहरण दूंगा जो मैंने बहुतों को कराए हैं और बहुत अच्छे अनुभव सब कर रहे हैं, टीचर्स का और डॉक्टर्स का। टीचर, अपनी क्लास में प्रवेश किया एक स्वमान के साथ। कोई बैठे हैं लौकिक टीचर, टीचर प्रोफेसर लेक्चरर्स, देखो आप सब भी करना, जोड़ देना और सिखाना। क्लास में प्रवेश कर रहे हैं एक स्वमान के साथ, 6 दिन के लिए 6 स्वमान ले लेना। दूसरा, प्रवेश करते ही सभी स्टूडेंट्स को एक नजर में आत्मा देखना, चमकती हुई आत्माएं बैठी हैं अपने अपने शरीरों में, ये सब देवकुल की मान आत्माएं बैठी हैं, भगवान की मान आत्माएं बैठी हैं, ये संकल्प पढ़ाना शुरू करें। और पूरे पीरियड में 45 मिनट का पीरियड है, 3 बार ऊपर से बाबा की किरणें आ गई, 10 सेकंड और देखो क्या होता है। मुझे कई टीचर सुना चुके, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए, और भी अच्छा जो करा रहे हैं, बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ गई, मेमोरी पावर बढ़ गई। ये हम उनको बता भी सकते हैं, अब जो भी टीचर्स हैं, और बच्चे बहुत ऐसे हैं जो ये सब चीजें चाहते हैं ना, पढ़ाई में मन लगे, याद ज्यादा रहे, आत्मा का अभ्यास। एक हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, 5 मिनट तक सबको मेडिटेशन कराने लगे हर पीरियड में, और परिणाम ये हुआ कि सबकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ गई, रिजल्ट और अच्छा आ गया। ऐसा नहीं हुआ 5 मिनट ले लिए भाई, हमारा 45 में से 5 सर ने ले लिए, 40 रह गए, ये नहीं, एफिशिएंसी बढ़ गई, बच्चों की शक्तियां बढ़ने लगी। ऐसे ही मैंने डॉक्टर्स को सिखाया, मैं पूछता हूं कितने पेशेंट आते हैं, 40 आते हैं रोज, बिजी हो जाते हैं, केस ऐसा भी आ जाता है भगाने वाला, टेंशन वाला, तो बहुत अच्छी बात, एक पेशेंट को आराम से डील करो। पेशेंट आया, आत्मा, पहली दृष्टि में आत्मा देख लो, इसमें तो कुछ मेहनत है नहीं। उसे पूछताछ कर रहे हैं तब भी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं, और अपने को एक स्वमान लेकर ही जाना है हॉस्पिटल में, अपने डिस्पेंसरी में। और जब उससे पूछ के प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ना डॉक्टर, तो जरा बाबा से कनेक्शन जोड़ लो, हाँ बाबा आपका बच्चा आया है, जरा आप भी बता दो कुछ, बस। तो हर पेशेंट के साथ अच्छा योग हो जाएगा ना, बीच में आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ताली बजा दो भाई, सब इनकी सक्सेस हुई है। तो ये जो स्पिरिचुअल पावर है ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कई डॉक्टर्स को पेशेंट बताने लगे हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास आते ही हमें तो लगता है हम ठीक हो गए, एक गुड फीलिंग होने लगती है, हम तो ठीक हो गए। तो ऐसे अपने भिन्न भिन्न कर्मों में अपने योग के लिए स्वयं को समय देंगे और अपनी भिन्न भिन्न प्रैक्टिस चुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसमें अच्छा योग न किया जा सके। सिंपल चीज, सबसे सिंपल और वह मोस्ट पावरफुल, बाबा मेरे साथ है, नहीं इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बाबा मेरे साथ है। इसके बारे में भी इतने सुंदर महावाक्य हैं बाबा की मुरलियों में, आप उन्हें ढूंढेंगे। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें ये भी याद रहता है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी और एक अनुभव होगा आगे चलकर। इसलिए इसको नेचर बना दें सभी, इस स्मृति को, एक अनुभव होगा जो विनाश होगा इस संसार में। विनाश छोटी घटना नहीं है, बहुत भयानक है, बहुत भयानक। एक भाई हमारे शांतिवन में रहता है, मुझे आज सुना रहा कि भाई मुझे रात को स्वप्न आ गया बहुत भयानक, कि बहुत ऊंची बिल्डिंग है लंबी चौड़ी और वो गिर रही है। और हम भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ भूल गया, बाबा भूल गया, मैं आत्मा हूं ये भी भूल गया, जान बचाने के चक्कर में सब भाग रहे हैं। आदत अगर बन गई बाबा मेरे साथ है तो क्या होगा, वो साथ होगा, ये फील होगा कि याद करते जैसे वो आ गया है। मैं सोच रहा था अभी बाबा है ना, व्यक्त बाबा, मुझे बाबा की एक बात याद आ रही थी कि प्रभु की गति मति को जानना सहज काम नहीं है। हम तो मोटे रूप से जानते हैं, शायद आगे चल के हम सब भी गाने लगेंगे, हे प्रभु तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। कब आया और कब चला गया आप लोगों ने भी तो देखा होगा, कुछ 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 तो पता चल ही गया ना कि मुरली पूरी करते वो तो चला गया था वापस, फिर तो नीचे वालों का खेल चल रहा था। और बाबा जाने के बाद भी ये तो करता ही है ना, अपनी शक्तियों को थोड़े दिन के लिए छोड़, थोड़ी समय के लिए छोड़ जाता है, अभी थोड़ा करते रहो अपना काम। तो बड़ी गई ये गति, तो हमें अनुभव होता रहेगा कि बाबा साथ है। परिस्थिति आएंगी, विनाश होगा, बाबा साथ है तो जैसे साथ है, और अनेक तरह की प्रोटेक्शन का अनुभव होगा। हमें कुछ पॉइंट्स आपको लिखा दूं, वो आप भिन्न भिन्न कर्मों में जोड़ लेना। कुछ पहले मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस लिख लें, जो आप उन कर्मों में करेंगे जो सरल कर्म हो, जिसमें मन बुद्धि ज्यादा इन्वॉल्व ना होती हो। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, दूसरा मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ हूं, ये सब बहुत पावरफुल स्थितियां, ज्वाला स्वरूप। तीसरा ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, हम नीचे ही हैं, ऊपर से किरणें पड़ रही हैं चलते फिरते। सभी इस अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे, वॉकिंग करेंगे, और वॉकिंग को इस तरह एंजॉय करेंगे कि जैसे बाबा की किरणों के नीचे घूम रहे हैं, डबल काम हो जाएगा। चौथा ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, ये चार। और भी किसी को कुछ याद है, मुझे लग रहा है और भी कुछ पावरफुल तो है, हैं? हाँ वो आगे, वो आगे, अभी और आगे चलें। मैं फरिश्ता हूं, एक हुआ पवित्रता का फरिश्ता और स्वमान का अभ्यास, एक अपने फरिश्ते स्वरूप की फीलिंग। मैं लाइट की बॉडी में हूं, लाइट हाउस हूं, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। भिन्न भिन्न स्वमान के अभ्यास, अपने जीवन के लिए कोई भी पांच स्वमान आप लिखेंगे यहां, खुद चिंतन करके या अपनी चर्चाओं से जो आपको प्रिय लगते हो, उनकी भिन्न भिन्न कर्मों में प्रैक्टिस करेंगे। पांच स्वरूपों के अभ्यास, उसमें से अलग अलग ले सकते हैं, मैं इस देव हूं इस देवी हूं, कभी अपने देव स्वरूप में स्थित हूं, कभी श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप का नशा। एक बहुत अच्छी स्मृति अवश्य सबको रोज एक बार करनी है, ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब मुझे सब कुछ छोड़कर वापिस घर जाना है। सब कुछ छोड़कर और सब कुछ लेकर, दोनों का अर्थ समझते हैं ना। दुनिया वाले तो कहेंगे दोनों क्या बात कह दी, सब कुछ छोड़ भी दिया और सब कुछ ले भी लिया, क्या छोड़ना है क्या लेना है वो हम सब जानते हैं। तो फील करेंगे जैसे आत्मा जा रही है ऊपर की ओर बाबा के पास। किसी कर्म में, मैं एक स्वमान पर विशेष आपका ध्यान दिला देता हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। कुछ क्षणों के लिए भी ये फीलिंग, फॉर 10 सेकेंड्स, एक दो बार, बहुत गुड फीलिंग होगी। इससे हमारा ओरा बहुत पावरफुल हो जाएगा और वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। अब एक और संकल्प इसमें हम जोड़ लें, रात को सोने से पहले मन को बिल्कुल खाली करके, लाइट करके और खुशी और नशे के संकल्पों से भर के सोना है। 10 मिनट अवश्य अपने को देना है। कोई बात मन को भारी कर रही हो तो बाबा के नाम लिख कर सोना है। आदत डाल सकते हैं एक 5 लाइन का लेटर भी, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड लिखना है रात को। अच्छी बातें भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बातें, कोई बोझ वाली बातें वो भी दे दें। अब जो पहली बात थी हमारी, ऐसे बहुत सारे कर्मों में आप इन सब चीजों को सेट कर लेना। चलते फिरते एक और चीज, चलते फिरते मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूं। मान लो आप घर से सेंटर तक जा रहे हैं, घर से ऑफिस तक जा रहे हैं, कहीं और मार्केट में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस नेचुरल हो जाए। लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, इससे वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। अब पहली बात, हमें इस समस्त ब्राह्मण परिवार में स्पार्क की ओर से ये लहर फैलानी है कि सभी अमृत वेले को कैसे एंजॉय करें, 1 घंटा रोज, ताकि जीवन बदल जाए, बुद्धि का लेवल बढ़ जाए, मन की पॉजिटिव पावर बढ़ जाए, कर्म क्षेत्रों में सफलता बढ़ जाए, विघ्न नष्ट हो जाए, विचार महान हो जाए, बाबा से वरदान मिल जाए, शक्तियां मिल जाए। पसंद है ये बात? पहले आप सभी करेंगे मेरे सहित, करेंगे? यह अमृत वेला तो सबसे भारी काम है। दिनचर्या को अब आप इस पे चिंतन करना है सबको, चाहे ग्रुप्स में चाहे कैसे भी, और समस्त ब्राह्मण बच्चों का अमृत वेला सुखद हो जाए, सफल हो जाए, रोज अच्छी तरह प्रभु मिलन हो जाए, रोज बाबा की दृष्टि मिलने लगे, रोज उससे वरदानों की अनुभूति हो जाए, रोज ऐसा लगे कि सवेरे अमृत से भरपूर कर लिया अपने को। जैसे काम पे जाते हैं तो कुछ खा पी के जाएंगे ना, भाई चलो 1 बजे लंच लेंगे, अभी 4 घंटे के लिए कुछ तो डाल के जाए ना अंदर में। ऐसे ही अमृत वेले पूरे दिन के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए भर दें आत्मा में, इसकी सुंदर प्लानिंग करनी है विनय भाई, विद अटेंशन। तो मैं कुछ आइडियाज दे रहा हूं जो बहुत सुखद फीलिंग देते हैं। उठते ही पहला संकल्प तो वही, बाबा गुड मॉर्निंग। और जब हम बाबा को गुड मॉर्निंग करें तो रिटर्न में फील करेंगे बाबा ने दुआओं का हाथ हमारे सिर पर रख दिया। और बाबा क्या है याद करो अभी अभी का, ब्लोटिंग पेपर, और हाथ रख के चूस लिया है सभी ब्रेन का, सब गंदगी चूस ली। सोने से पहले बाबा को गले मिल जाएंगे, गुड नाइट करेंगे ना, गुड नाइट की और बाबा ने हमें गले लगा लिया है और अपने स्पर्श से सब चूस ली है गंदगी अंदर की, ब्लोटिंग पेपर को याद करेंगे अब। तो सवेरे फिर दूसरा संकल्प, बहुत सुखद फीलिंग होगी, बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, एकदम मन आनंदित हो जाए, फिर मेरे जैसा भगवान कोई नहीं, आपने मुझे क्या क्या दिया वो भी याद कर सकते हैं, आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए, आपने बहुत शांति दे दी, आपने सन्मार्ग दिखा दिया है, हम तो भटक रहे थे, आप हमारे जीवन में ही आ गए, हमारे हो गए, याद करें क्या क्या मिला इस जीवन में, लिस्ट बना लें जो बाबा ने कहा प्राप्तियों की, हमने तो दो क्लासेस की हैं यहाँ पर और लिस्ट बनवा दी है सबकी, एक पांडव भवन में एक यहाँ नीचे, लिस्ट बनाएंगे आप भी, और सवेरे उठ के उसको याद करते हुए सच्चे मन से बाबा को शुक्रिया करेंगे, दिल से निकलेगी ना, बहुत दुख था जीवन में बाबा आपने आकर हमारे सब दुख हर लिए, एकदम प्यार में भर जाएगा मन, इसके बाद योग करेंगे और योग को चार पांच भागों में बांट देंगे, क्योंकि बिना प्लानिंग के जब हम योग करते हैं तो मन भटकने लगता है। पहले पांच स्वरूपों का अभ्यास, उसमें पहला ही अभ्यास आत्मा का है, पांच स्वरूपों का अभ्यास, पांच मिनट लगा देंगे इसमें। दूसरा, परमधाम में पावरफुल स्थिति, जो हमने चार स्थिति का वर्णन किया पावरफुल, चाहे बाबा की किरणें आ रही हैं, चाहे हम बाबा के साथ हैं, चाहे बाबा हमारे सिर पे छत्र छाया है, चाहे अन्न सूर्य आंखों के सम्मुख है, ये सब अभ्यास 15 मिनट। फिर कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट सकाश देना, उसके भिन्न भिन्न तरीके आप निकाल लेंगे, और फिर आखिर के 10 मिनट कम से कम सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा के सामने बाबा को थैंक्स देना, बाबा के साथ बातें करना, बाबा से वरदान लेना, और एक बहुत अच्छा अनुभव लास्टली कर लेंगे उसी में, कि बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख कर मुझे याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो, तुम तो कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, तुम तो पूर्वज हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम्हें तो मैंने विश्व कल्याण के लिए चुना है, 5-10 बातें जैसे बाबा के मुख से सुन रहे हैं, जग जाएंगे हम, और इस तरह योग के बाद पूरी तरह आनंदित होकर उठेंगे। तो सभी एक सुंदर प्लानिंग करेंगे जो सारे ब्राह्मण परिवार में जाए, कि सभी को अमृत वेले का संपूर्ण आनंद लेना है, नियम निभाना नहीं कि उठ गए बैठ गए।
ओम शांति। मुझे लगता है इस शांत अंतर्मुखता के माहौल को सिर्फ एक हाथ की ताली से अभिवादन करके हम बरकरार रखें। भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।